हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। करण ने हैरानी से कहा, क्या मतलब है इस बात का? इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, शिविका ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसकी अनामिका में फिर से उसे सगाई की अंगूठी पहना दी। शिविका के ऐसा करते ही करण हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी ओर देखने लगा। शिविका उसके हाथ में पहनी अंगूठी की ओर देखते हुए बोली, कितनी परफेक्ट फिट आई है ये अंगूठी तुम्हें। वैसे मेरी वाली अंगूठी भी मुझे परफेक्टली फिट है। पता नहीं इतनी परफेक्ट साइज की कैसे डिजाइन करवाई पापा ने। करण ने तुरंत पूछा, अच्छा तो ये बात भी तुमने आज ही नोटिस की? शिविका ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, बिल्कुल आज ही तो नोटिस करूंगी ना, अब आज ही तो पहनाया है। और वैसे भी अब से पहन कर रखना ताकि सबको पता चले कि तुम्हारी सगाई हो गई है और वो ऑफिस में निधि, पूजा, कविता तुम्हारे आसपास ना भटके। करण ने शरारत से उसे छेड़ते हुए कहा, ओहो तो जलन हो रही है तुम्हें जो ऑफिस में लड़कियां मेरे आसपास भटकती रहती हैं। वैसे मैंने तुमसे कहा ना, मैं हूं ही इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव, अब सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो क्या करूं मैं। लेकिन मेरी होने वाली वाइफ को इस बात से जलन हो रही है ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शिविका नजरें चुराते हुए बोली, शट अप करण, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी जलन तो तुम्हें होती है मुझे साहिल के साथ देखकर, तुम्हें क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया? उसकी इस बात पर करण ने भी तुरंत सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे उस साहिल से ऐसी कोई भी जलन नहीं होती है। और वो तो बस पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लगता है। पता नहीं क्यों तुम्हें वो अच्छा आदमी लगता है। वैसे मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पता नहीं क्यों लेकिन है। करण ने बहुत ही विश्वास से शिविका की आंखों में देखते हुए ये बात कही। शिविका को भी उसकी बातों में सच्चाई नजर आई और उसने करण के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बहुत ही इत्मीनान से कहा, थैंक यू मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए, और मैं तुम्हारा ये भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी करण, बिलीव मी। करण ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वो तसल्ली से मुस्कुरा कर बोला, आई ऑलरेडी बिलीव यू, बट तुम्हें जरा भी विश्वास नहीं है ना मुझ पर, इसीलिए। वैसे चाहो तो हमारी सगाई अनाउंस भी कर सकती हो, उससे तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटीज और जलन दूर हो जाएंगी। शिविका थोड़ी घबराते हुए बोली, नहीं मैं ऑफिस में अभी ये बात अनाउंस नहीं कर सकती। मेरा मतलब है अभी हमें ये रिलेशन सीक्रेट रखना होगा, और इस बारे में तो हमारी बात हो चुकी है ना करण। शिविका ने जिस तरह एकदम से ये बात मना करते हुए कही, उसका रिएक्शन देखकर करण का मुंह जमीन पर गिर गया। उसने शिविका के हाथ से अपना हाथ हटा लिया और उठकर खड़ा होते हुए मायूसी से बोला, आई एम सॉरी, मुझे ही शायद ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और वैसे भी कौन सा मेरे जैसे मिडिल क्लास अनसक्सेसफुल आदमी के साथ सगाई अनाउंस करके तुम प्राउड फील करोगी? कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। करण की ऐसी मायूसी भरी बातें सुनकर शिविका सन रह गई। वो बेड से उठने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं करण, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम प्लीज गलत मत। अपनी बात बोलते हुए जैसे ही शिविका ने जमीन पर अपना दूसरा पैर रखा और उठकर खड़े होने की कोशिश की, उसे बहुत तेज दर्द हुआ जिसकी वजह से उसकी हल्की चीख भी निकल गई। उसकी दर्द भरी सिसकारी सुनकर करण ने तुरंत पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और उसे पकड़कर वापस बिस्तर पर बिठाते हुए बोला, अरे संभल कर और बैठी रहो ना, तुम क्यों खड़ी हो रही हो, तकलीफ बढ़ जाएगी पैर की। इतना बोलकर करण ने उसे बिस्तर पर बिठाया और पीछे का तकिया ठीक करते हुए उसे बिल्कुल कायदे से बिस्तर पर बिठाया। उसने शिविका के कंधे पकड़कर उसे तेल लगाया। इस वक्त उसका चेहरा भी शिविका के चेहरे के सामने था और वो उसके काफी नजदीक था। करण का ध्यान तो शिविका की तरफ नहीं था, लेकिन शिविका एकटक उसे ही देख रही थी, क्योंकि वो जिस तरह से उसकी फिक्र और उसकी केयर कर रहा था, शिविका को बहुत अच्छा लग रहा था और वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। तभी करण ने भी एकदम उसकी तरफ देखा तो पाया कि शिविका पहले ही उसकी तरफ देख रही है, और उन दोनों की नज़रें मिली तो जैसे एक पल के लिए उन दोनों की ही सांसें थम गईं। करण का एक हाथ अपने आप ही शिविका के गाल पर चला गया और वो एकदम हल्के हाथों से शिविका का गाल सहलाने लगा। शिविका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और करण पता नहीं किस मदहोशी की हालत में उसके होठों की तरफ ही देखने लगा। उसके चेहरे पर झुकते हुए वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, मम्मा काव्या स्कूल से वापस आ गई। काव्या की आवाज सुनते ही शिविका ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और जल्दी से करण को खुद से दूर धकेला। करण भी एकदम से होश में आते हुए उससे थोड़ा दूर होकर बैठ गया और उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां दरवाजे पर सिर्फ काव्या थी। ज्योति उसका बैग लिए हुए उससे कुछ कदम पीछे थी, इसलिए उन दोनों ने राहत की सांस ली कि काव्या के अलावा फिलहाल किसी ने उन दोनों को इस तरह से नहीं देखा। काव्या ने भी दरवाजे से अंदर आते हुए उन दोनों को इस तरह से देख लिया था, इसलिए वो उन दोनों के सामने बिस्तर के पास आकर खड़ी होते हुए बोली, क्या कर रहे थे आप दोनों ऐसे? काव्या ने बड़ी मासूमियत से सवाल किया, लेकिन उसके इस सवाल पर करण और शिविका दोनों ही थोड़े शर्मिंदा महसूस करने लगे और एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाए। लेकिन करण ने आगे आकर काव्या का हाथ पकड़ लिया और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, बेबी, वो मैं बस तुम्हारी मम्मा की हेल्प कर रहा था। उनके पैर में चोट लगी है ना, तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। करण की बात सुनकर काव्या एकदम से बोली, अरे हाँ मम्मा, आपको तो चोट लगी थी ना, अब आपकी चोट कैसी है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? शिविका ने मुस्कुराकर अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, नहीं बेबी, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, और अब तुम आ गई हो ना, तो बाकी की चोट भी ठीक हो जाएगी। आओ मम्मा के पास आओ। शिविका के इस तरह बुलाने पर काव्या करण की गोद से उठते हुए शिविका की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो वापस करण की गोद में बैठ गई और बोली, नहीं मम्मा, मैं फ्रेंड के पास ही ठीक हूँ, और अभी आपके पास आऊंगी तो आपकी चोट और हर्ट हो जाएगी। शिविका उसे समझाने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, अरे नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम करण उसकी बात बीच में ही काटता हुआ बोला, रहने दो शिविका, सही कह रही है वो, तुम रेस्ट करो और मैं हूं ना काव्या के साथ। करण की इस बात पर काव्या ने खुश होते हुए उसे हाई फाई दिया। शिविका ने भी उन दोनों को मुस्कुराकर देखा और जब तक ज्योति वहां पर आ गई और उसने काव्या का बैग उसके कमरे में रख दिया, वो काव्या और शिविका के खाने के लिए पूछने लगी। खाने के बारे में सुनकर शिविका ने समय देखा तो 2:30 बज रहे थे और फिर उसने करण से पूछा, इतना समय हो गया करण, तुमने भी कुछ नहीं खाया है ना? करण ने उसकी बात का जवाब दिया, अरे लेकिन कुछ काम भी तो नहीं किया मैंने आज, कोई बात नहीं, मुझे लंच ब्रेक नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। शिविका ने उसे बताया, लंच ब्रेक नहीं दे रही हूँ मैं तुम्हें, वैसे भी बस साथ में खाना खाने के लिए पूछ रही हूँ, और मैं पूछ क्यों रही हूँ? बोलते हुए शिविका ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और फिर ज्योति को आदेश दिया, ज्योति एक काम करो, तुम हम तीनों का खाना यहाँ कमरे में ही ले आओ, क्योंकि मैं तो नीचे आ नहीं पाऊंगी। ठीक है मैडम। इतना बोलकर ज्योति वहां से उन तीनों का खाना लेने के लिए चली गई। करण को शिविका का इस तरह से हक जताना काफी अच्छा लगा और वो मुस्कुराकर उसी की ओर ही देखने लगा, जिसे काव्या ने नोटिस कर लिया और फिर उसकी शर्ट खींचते हुए उसका ध्यान अपनी ओर करने लगी। उसके ऐसा करने पर करण का ध्यान उसकी ओर हुआ। करण ने इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ बेबी? काव्या ने धीमी आवाज में कहा, कितनी ब्यूटीफुल है ना मेरी मम्मा। करण ने भी मुस्कुराकर सहमति जताई, हाँ वो तो है, लेकिन तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो?
काव्या ने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, अरे बता नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ, क्योंकि इतनी देर से तुम मम्मा को ही देखकर स्माइल कर रहे हो। उसके ऐसा करने पर करण उसका गाल खींचते हुए बोला, नॉटी बेबी। शिविका ने अपने मोबाइल फोन से नजरें उठाते हुए उन दोनों की तरफ देखकर कहा, क्या बात हो रही है दोनों फ्रेंड्स के बीच, मुझे भी बताओ कुछ। शिविका का सवाल सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। करण ने हल्के से नहीं में अपना सिर हिलाया तो काव्या उसका इशारा समझ गई और शिविका की तरफ देखकर अपनी आंखें एकदम छोटी करते हुए बोली, नहीं हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये हम दोनों फ्रेंड्स का सीक्रेट है ना, क्यों करण? करण ने भी मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल टॉप सीक्रेट। करण के ऐसा करते ही काव्या खिलखिलाकर हंस दी और करण भी हंसने लगा। उन दोनों को देखकर शिविका भी मुस्कुरा रही थी, जब तक काव्या एक और मेट के साथ उन तीनों के लिए ट्रॉली में खाना लेकर वहां कमरे में आ गई और उसने साइड में रखी टेबल वहां बिस्तर के पास लगाते हुए उस पर पूरा खाना लगा दिया और खाना लगाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही शिविका ने प्लेट में खाना सर्व किया और वो तीनों एक साथ ही खाना खाने लगे। ऑफिस में ऋषभ शिविका की वजह से ऑफिस पहुंच तो गया था, लेकिन उसका ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और उसका बस वहां से निकलकर भाग जाने का मन कर रहा था, लेकिन वो अपनी मर्जी से ही आज वहां पर आया था, इसलिए वो फिलहाल ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वो केबिन की खिड़की पर आया और वहां खड़ा होकर वहां से बाहर आते जाते लोगों और कारों को देखने लगा। वो बाहर की तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि उसका भी वहां से बाहर जाने का मन हो रहा था। लेकिन फिर उसने घड़ी की तरफ देखा तो अभी शाम के 6 बज रहे थे और अभी फिलहाल तो वहां से नहीं जा सकता था, इसलिए बेबसी से वहां पर खड़ा था। लेकिन तभी उसे नीचे कोई जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। उसका ऑफिस बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पर था, इसलिए उसे पूरा साफ चेहरा तो नहीं नजर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस इंसान को पहचानता था, इसलिए उसे समझ आ गया। ऋषभ नीचे की तरफ देखते हुए बोला, ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे हाँ, इसका कोचिंग सेंटर, वो भी तो शायद यहाँ आसपास ही है, मैं पहली बार गया था वहाँ पर। खिड़की पर खड़े ऋषभ की नज़रें उस लड़के को भी फॉलो कर रही थीं, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, समर था, जिससे ऋषभ पहले भी 2 बार मिल चुका था। लेकिन उसके बाद से उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए अभी समर को वहाँ पर देखकर ऋषभ का उससे मिलने जाने का मन कर रहा था। लेकिन ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे किस बहाने से मिले, और तभी उसने अपने हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट निकाला और उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया, ठीक उसी वक्त जब समर वहां से गुजर रहा था। क्रमशः